گرا دیں یعنی زمین پھٹے اور یہ اس میں چلے جائیں، یا پھر دوسری صورت نمبر دو لکھیے گا، او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا انہیں یہ خوف بھی نہیں رہا کہ ان پر آ دھمکے کوئی عذاب جہاں سے انہیں گمان بھی نہ ہو. نمبر تین، تیسرا عذاب آیت 46 میں، او یا خزفہم فی تقلبہم فما ہم بموجزین، یا وہ ان کو پکڑ لے ان کے چلنے پھرنے میں، پھر وہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں. یعنی پہلی صورت کیا تھی کہ جب یہ گناہ کرتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، اور اصل میں اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کوششوں کی طرف ہے، سازشیں کرتے تھے. صورت انفال میں بھی ہم یہی بات پڑھ چکے ہیں، اس یم کرو بکل لذین کفروا، تو مکر کیا تھے کہ نہ رہے نبی، نہ رہے دین کا کام، نہ رہے انسانیت. تو یاد رکھیے کہ انسانوں کی سب سے بڑی سازش اللہ کے نبی کو مارنے کی ہے. دار الندوہ کی سرگرمیوں کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی کو راستے سے ہٹا دے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب یہ ایسا کرتے ہیں تو کیا یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو زمین میں گرا دیں؟ فخسفنا، سورت قصص آیت 81 میں قارون کے بارے میں آتا ہے کہ فخسفنا بہ وبداره، ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا. تو پہلی صورت کے کہ جس زمین پر کسی بھی غلط کام کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، کیا لوگ ڈر نہیں جاتے اس بات سے کہ زمین پھٹے اور اس کے بعد یہ زمین میں چلے جائیں؟ پھر دوسری صورت یہ کہ ان پر عذاب وہاں سے آئے جہاں سے یہ سوچ بھی نہیں سکتے، کوئی ایسا طریقہ کار کہ جو ان کی امیجینیشن میں بھی نہ ہو. پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا کہ ان کی اولادوں کو مسلمان کر دیا گیا، یا بعض دفعہ ایسے طوفان جیسی چیزیں آسمانی آفات کی صورت میں آ جاتی ہیں کہ جس کو لوگ بالکل بھی امیجن نہیں کر رہے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو اس سے بھی ڈر نہیں لگتا. تیسری صورت کے او یا خزفہم فی تقلبہم، یا پھر پکڑ لے ان کو ان کے چلنے پھرنے میں. تقلب کا لفظ کیا ہے؟ قلب یقلب تقلیب، قلب کہتے ہیں حرکت دینے کو، الٹ پلٹ کرنا. یہ جو دل ہے نا اس کو بھی قلب اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو جذبے ہوتے ہیں یہ فیلنگز بدلتی رہتی ہیں. اس سے کیا کیا مراد ہے؟ نمبر ایک ان کی ایکٹیویٹیز، چلنا پھرنا مراد ہے، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، موجیں مستیاں کر رہے ہیں. جیسے سورۃ آل عمران آیت 196 میں آیا، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ کافروں کی یہ ترقی اور ان کا جو دوڑنا دھوپنا یہ سب آپ کو پسند نہ، یعنی گھبراہٹ میں ڈال دے. کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، گھوم رہے ہیں، ورلڈ ٹور پہ ہیں. اور اسی طرح تقلب کا ایک معنی ان کی کروٹیں بھی ہیں، بستر پہ آرام سے مزے لے رہے تھے اور ایک دم اللہ کی پکڑ آ جائے. ایک اور معنی تقلب کا کیا ہے؟ اختلاف، بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں، اسلام کے خلاف بحثیں، مسلمانوں کے خلاف باتیں، مولویوں کے خلاف باتیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا ہم ان کو نہ پکڑ لیں اس میں؟ فما ہم بھی موجزین، بس وہ نہیں عاجز کرنے والے. کس کو؟ اللہ کو. موجزین موجز کی جمع ہے، مفعل کا وزن ہے، عین جیم زا. عجز کہتے ہیں کسی کام کے کرنے سے قاصر ہونا. عجوز کہتے ہیں ہیلپ لیسنس کو، عجوز بڑھیا کو بھی کہتے ہیں، قرآن پاک میں یہ لفظ آتا ہے. عجز ضد ہے قادر کی، قادر کون ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ٹھیک ہے؟ تو اللہ قادر ہے تو اس کی اپوزٹ عجز ہے. اسی لیے پچھلے سبق میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے پاس عاجزی نہیں ہے اور وہ اس کو بندوں سے مطلوب ہے. تو گویا کہ مراد یہ کہ تم بھاگ دوڑ میں تھے اور اللہ تمہیں پکڑ لے. بچہ بھاگ، اب دیکھیے بعض دفعہ بچے کو پکڑنے لگتے ہیں نا تو وہ اور تیز بھاگتا ہے، اور بعض دفعہ ماں تھک جاتی ہے، بچہ آگے بھاگتا رہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم گناہ کر کے مجھے بھی بس نہیں کر سکتے، تم اپنے آرام فرما رہے ہو اور اللہ تمہیں پکڑ لے، کوئی مشکل بات نہیں ہے. اگلی صورت کیا ہے عذاب کی؟ آیت 47، او یا خزہم علی تخوف، یا ان کو پکڑ لے خوف دلا کر. تخوف کا لفظ خوف سے ہے، اور لفظ میں چھپا ہوا بھی دکھ رہا ہے یہ لفظ. خوف میں ان کو کیسے پکڑ لے؟ یعنی ان کو خوف دلا دے. یعنی مجرم کو سب سے زیادہ ڈر جس چیز کا ہوتا ہے وہ پکڑ کر، یعنی جو غلط کام کرتے ہیں ان کو صاف پتہ ہم کرتے ہیں. تو اتنا شفیق اور مہربان رب بھی بعض اوقات لوگوں کو پکڑ لیتا ہے. سورۃ بنی اسرائیل آیت 15 میں آتا ہے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی قوم کو نہیں پکڑتے یا عذاب نہیں دیتے جب تک کہ وہاں کسی رسول کو نہ بھیج دیں. تو گویا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پکڑ کے مختلف انداز ہیں. असल में तो इशारा यही है कि तुम इस नबी की कदर नहीं करते। ये दीन जो तुम्हें देना चाहते तुम्हारे अपने ही फायदे का था, लेकिन तुम मानना नहीं चाहते। फिर आप देखिए, ये जो खसफ है ना, ये खजर में भी होता है और सफर में भी होता है। जमीन फटे और उसमें लोग गिर जाएं, जैसे जलजला आता है तो घरों के घर जमीन में चले जाते हैं। सफर में कैसे होता है खसफ? गाड़ियां टकरा जाती हैं, जहाज आपस में टकरा जाते हैं। इसी तरह जो लफ्ज आखिरी है ना, तखव्वुफ, तखव्वुफ का एक मनी तनकुस भी है, नुक्स, कमी, यानी खौफ और कमी करके मुराद है कि तुम्हारी तादाद को कम कर दे। आहिस्ता आहिस्ता कोई चीज कम होती है, पता ही नहीं चलता। जैसे बर्फ है, रखी होती है, पता नहीं चलता, थोड़ी देर में खत्म हो जाती है। तो गोया कि तुम्हारी उम्रों को घटा दे, तुम्हें घोलने लगे कि तुम इस नबी के साथ ये करते हो, और हकीकत है कि मक्का वालों के साथ यही हुआ। अल्लाह ने गैर मखसूस तरीके से इनको ऐसे पकड़ा कि इनका नाम तक बाकी नहीं रहा, कि आज मक्का मदीना की हद में ये जो जा नहीं सकते, इनका गलबा खत्म हो गया। तो यहां हम सब के लिए एक ड्रामा है, जब भी नाफरमानी करें तो ये सोच ले क्या हम अल्लाह को चैलेंज कर रहे हैं। कई ऐसे खानदान आपको दुनिया में दिखते थे, एक वक्त था कि बड़ी उनकी इज्जत थी, बड़ा रोब और दाब था, गलबला गलगला था, लेकिन बाद में आज उनका नाम तक कोई नहीं लेता। एक वक्त था उनके बगैर कोई फैसले नहीं होते थे, आज कोई उनको पूछता नहीं है। तो दुनिया में नाफरमानियों के साथ रहना इंसान का हक नहीं है। फितरत का असूल है कि वो हर वो चीज़ जो अल्लाह ताला के साथ अपने आप को मुकाबले पे ले आती है, तो उस पे अल्लाह को फिर अल्लाह उसको मोहलत देता है। सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि गलत बात को सुनकर सब्र करने में अल्लाह ताला से बढ़कर कोई सब्र नहीं करता। और हकीकत है, हम जो कुछ करते कराते देखते दिखाते हैं जिंदगियों में, अगर हम देखें तो ये सारी चीजें हमें दिखती है। इन आयतों पे एक क्लिप है छोटा सा, सिर्फ इस सोच के साथ कि सूरतें किस तरह से हो सकती हैं पकड़ की। हम नहीं कहते कि जो भी किसी के साथ हुआ या हो रहा है वो कोई पकड़ है, हमारा ये मुकाम नहीं है। बस हम ये इबरत की नजर से ऐसी चीजों को देख लेते हैं, और इन आयतों को के ऊपर के जब पकड़ हो, ये किसी एक पार्टी है तो उसमें लोग डांस कर रहे हैं और थोड़ी देर के बाद वो डांसिंग फ्लोर टूटता है और क्या होता है इसको देख लीजिए। बहरहाल आप देख लीजिए कि अल्लाह की पकड़ तो कभी भी आ सकती है ना। इंसान जब भी कोई नाफरमानी करे, इवन पाँव भी जमीन पे जोर से मारते हैं ना जब रहमत के मारे, तो उस वक्त इंसान ये सोच सकता है कि अगर इसी वक्त जमीन फटे, और कुर्बे कियामत की अलामतों में से ये आम बात मिलती है कि जमीन फटेगी और पूरे पूरे कबीले, पूरे पूरे खानदान जमीन के अंदर चले जाएंगे। और ऐसी की चीजें आपको, अगर थोड़ा सा साहली इलाकों पे आप रहें तो इसकी आपको रिपोर्टें मिलती हैं। पीछे भी आपको बताया था कि फ्लोरिडा के साहिल जो है, साहली घर है, पूरे पूरे घर अपने जगह से हटते हैं और जमीन नीचे से खोखली हो चुकी होती है पानी लग लग के, तो पूरे पूरे जमीन बोस हो जाते हैं। एक इंसान है, उसको यह एहसास हो कि वो एक ऐसी जगह पे, बल्कि तस्वुर में ले आइए चलिए कि एक शख्स है, दरिया में सफर कर रहा था, कश्ती उल्टी और वो पानी में डूब गया। अब जब वो पानी में डूब रहा है, हचकोले खा रहा है, उसकी ख्वाहिश क्या होगी कि मुझे कोई किनारा मिले और मैं वहां रुक जाऊं। इतने में उसके पांव किसी सख्त चीज से टकराए, वो मजीद नीचे जाने से बच के उस जगह पे अपने पांव टिका दें और सोचे कि अभी कोई रेस्क्यू टीम आएगी और मुझे बचा के ले जाएगी। इतनी बात तसव्वुर में आ गई है। इतने में जब उसके जरा से होश ठिकाने ठीक हो तो उसको लगे कि ये किस पे खड़ा हूं, और जब गौर करे तो वो एक टाइम बॉम जो किसी ने पानी में फिट किया हुआ है और उसका रिमोट ऊपर किसी के हाथ में है। आप मुझे बताइए कि क्या वो दोबारा पानी में छलांग लगाना पसंद नहीं करेगा या उस टाइम बॉम पे खड़ा होगा जिसका किसी वक्त रिमोट चलने वाला है। वहां आप उससे कहेंगे आओ जरा इंजॉय करो, कुछ अम्यूजमेंट, कुछ इंजॉयमेंट, तो कहेगा अल्लाह के बंदो मैं बारूद के ढेर पे खड़ा हूं, मैं यहां इंजॉय कैसे कर सकता हूं। अब इसको आप अपनी और मेरी इस जिंदगी पे लेके आए, ये जमीन क्या है? एक टाइम बॉम है। पिछले सबक में ये बात पढ़ ली तो याद रखिए, इस जमीन पे मस्ती करने का मोहलत कर गुनाह करते वक्त डरना चाहिए। जब इंसान गुनाह करता है तो रिवायात में आता है कि जमीन कांपती है। एक मौके पे किसी ने अल्लाह के नबी से जलजलों के आने की वजह पूछी थी कि जलजले क्यों होते हैं, तो फरमाया जब जमीन इंसानों के गुनाहों से कांपती है तो जलजला आता है। आप साइंटिफिकली जो मर्जी रीजन दें, वो जी वेल्केनोज है और वो लावा फटता है और दिस है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन पीछे असल ये होता है। तो जिंदगी में खुशियों के मौके पे नाफरमानी के काम करना ये अल्लाह के अजाब को बुलाता है। अल्लाह को हमसे क्या चाहिए? आजजी। इसी का जिक्र आयत 48 में, अवलम यरो इला मा खलक अल्लाह मिन शय, क्या ये देखते नहीं हैं अल्लाह की पैदा की हुई हर शय की तरफ। यानी देखो, गौर करो, सोचो, कायनात को देखो, क्या है कायनात की चीजों के साथ। या तफय्यो जिलालुहु अनिल यमीनी वश्शमाइल, के झुकते हैं इसके साए दाएं और बाएं, सुज्जदल लिल्लाही, अल्लाह को सजदा करते हुए, वहम दाखिरून, और वो सब आजजी की कैफियत में होते हैं। पिछली आयतों से इसका रब समझ आ गया कि तुम क्यों इतना करते हो, कायनात की तो हर चीज अल्लाह के आगे झुकी हुई है, तुम ना झुको, तुम्हारा साया तो झुकता है ना। ये तफैया का लफ्ज है फा या हमजा इसका रूट है, लौटना, पलटना, रिटर्न के मानों में, और जिलाल जिल की जमा है, शमाइल शमाल की जमा है। सूरज जब निकलता है तो इसका साया एक तरफ होता है, जब ढलता है तो उसका साया दूसरी तरफ होता है। सूरत रात आयत 15 में भी यही बात है कि अल्लाह के लिए सजदा करता है हर एक जो आसमानों जमीन में है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम क्यों बड़े बनते हो, कभी आप खुशियों के मौके पे जरा इंसानों का रद्द अमल तो देखा करें। ऐसे लगता सलीका ना कुछ, लेकिन ऐसे मौकों पे लोगों को बन के दिखाते हैं हम क्या। तो खास तौर पर ये आयतें जो है ये अल्लाह के गजब को भड़काने वाली हैं, जब इंसान ऐसे मकर करे कि दीन के नाम पे या दुनिया के नाम पे अल्लाह के हुक्मों को टूटता हुआ देखे और तोड़े, और उसको कोई गैरत ना आए, कोई जोश ना आए। अल्लाह कहते तुम ना झुको, तुम्हारा साया तो झुकेगा। आप देखिए कि साया कभी आसमान पे नहीं आता, और साया कब झुकता है, साया कब पड़ते हैं, जब रोशनी आती है। इसी तरह जब इस इंसान के ऊपर वही की रोशनी पड़ती है ना तो झुकता है। फिर बोलती हूँ, दोहराऊंगी, अंधेरे में कभी साया नहीं आता और साया हमेशा जमीन पे झुकता है। साया कब बनता है, शेडो कब बनता है, जब रोशनी होती है। भी रोशनी पे हमें अल्लाह ताला हमारे दिलों को खोल देता है। यही तो बात कही जा रही है कि इस रसूल की दावत को मानते नहीं हो, हालांकि जिस चीज की दावत ये रसूल दे रहा है कायनात की हर चीज उसका अमली सबूत दे रही है। तो झुक जाओ, आजिज बनो, खुशी हो के गम हो, बस छोटे बन के रहो और अपने आप को अल्लाह के आगे रखो। जब सूरज चढ़ता है तो साया दाईं तरफ होता है, और जब सूरज ढलता है तो वो बाईं तरफ होता है। तो दोनों का इशारा करके बता दिया कि ये हर चीज अल्लाह के हुक्म से झुकती है। तो तुम भी आजिज बन जाओ, खुद से पूछिए कितनी आजिज़ी आई। बहुत सारे लोग अपना सर तो झुका देते हैं अल्लाह के सामने, लेकिन अपनी अक्ल नहीं झुकाते। बहुत सारे लोग अपनी नाक तो जमीन पे रख देते हैं मगर अना नहीं झुकाते। बहुत सारे लोग रुकू में तो चले जाते हैं मगर अंदर से नहीं झुकते। और इंसान का असल पता पता चलता है जब कोई उसके ऊपर खुशी का वक्त आता है। ये वो वक्त होता है जो इंसान को उसकी औकात दिखाता है। फरमाया वलिल्लाहि यस्जुदु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ध, और अल्लाह ही को सजदा करते हैं आसमानों और जमीन में जितने भी जानदार हैं। मिन दाबते वल मलाइकत व हुम ला यस्तकबिरून, जितने भी जानदार हैं और फरिश्ते भी, और वो तकबुर से काम नहीं लेते। इस आयत के ऊपर गौर करें तो मुझे तो ऐसे लगता है कायनात की हर चीज झुकी हुई है। और ये जो लफ्ज है ना दाबा, दबीब की जमा, आहिस्ता आहिस्ता चलने वाली चीजें, मुराद है कि मूविंग क्रिएचर्स। हदीस का खुलासा है कि आसमान चिरचिरा रहा है, यानी जैसे कोई भारी शख्स किसी कुर्सी पे बैठता है ना तो आवाज आती है। और फरमाया वो क्यों ना चिरचिराए कि चार उंगल, ये देखे चार उंगलें इतनी होती हैं, इतनी सी जगह, चार उंगल जगह आसमानों पे नहीं है कि जहां कोई फरिश्ता अल्लाह के आगे झुका हुआ ना हो। तसव्वुर में लाना है ना तो खाना का बकर नजर जिन में ले आइए, तो आसमानों में अल्लाह के आगे इतने झुकते जाएगा। अगर मैं अल्लाह के आगे नहीं झुकूंगी अल्लाह का कुछ नहीं जाएगा। अल्लाह कहते झुक जाओ, मेरे आगे कमजोर हो जाओ, बात समझ में आए कि ना आए, समय ना वात आना। बस दफा लोग अपनी नाफरमानियों के लंबे दलाल देते हैं, आज का दौर इस तरह ये वो। याद रखिए सबसे पहली नाफरमानी जो इस जमीन के ऊपर हुई थी वो सजदे का इनकार थी, इबलीस। और सजदे का इनकार असल में आजजी का इनकार था। तो हम सब के अंदर जो चीज अल्लाह को मतलूब है वो आजजी है, झुका करें, कुछ नहीं हो मैं। किसी खुशी के मौके पे उछल कूद कर भी ले तो उसके बाद जब अल्लाह ने हमें बिस्तर पे डालना है तो जो चीजें निकली वो कौन बर्दाश्त करेगा। अक्सर आपने फील किया होगा, मैं कोई ऐसे अपनी तरफ से कमेंट नहीं दे रही लेकिन मेरा ख्याल है कि अक्सर जब कोई फंक्शन गुजरता है तो उसके बाद घर में से अक्सर लोग बीमार हो जाते हैं। ऐसा होता है, कुछ कहते हैं हम फिर घोड़े बेच के सोए, दो दो दिन सोते रहे, नमाजें पता नहीं कब पढ़ते होंगे। वजह क्या है? एक तो आप कहते हैं ना जी थकन बहुत है, इतने रातों से जागे हुए यार, ये नहीं वो नहीं, लेकिन असल में ये सजा होती है। किसी भी गुनाह की महफिल से उठें और अगर आपके दिल पे बोझ, आपके दिमाग पे बोझ, आपके जिस्म पे बोझ है तो मान लीजिए कि अल्लाह ताला ने पकड़ने का अंदाज किया। तो अल्लाह ताला कहता है कि तुम जो मर्जी करो। याद रखो कि इल्म ज्यादा आने से आजजी कोई नहीं आती, इल्म की बात पे अमल करने से आजजी आती है। और आप देखेंगे कि जो खुद को कुछ नहीं समझता ना वो बड़े बड़े काम करके भी कहता है कि हम कुछ नहीं करते, और जो कुछ ना भी करे वो छोटे छोटे कामों पे भी पहुंचता है। हम कहते हैं बस हल्की सी पलकें झुका के दिखा देंगे अल्लाह को कि हम तो बड़े आजिज थे। तो आजजी क्या है कि अल्लाह के बड़ाई को मानो। और आप देखिए कि यहाँ लफ्ज क्या है, अल्लाह ताला कहते हैं कि अपने से ऊपर वाले रब को, या खाफ होना रब्बा मिन फौकिहिम, इसको हाईलाइट करें आयत 50, कि वो डरते रहते अपने ऊपर अपने रब से। लफ्ज फौक का हम को हाईलाइट करें, अल्लाह ऊपर है, उसका गलबा, उसकी बड़ाई, मादी बड़ाई। अल्लाह ताला आसमानों पे है, लोग अल्लाह से डरते हैं। वह यफ़अलून मा युमरून, और वो करते हैं जिसका उनको हुक्म दिया जाता है। क्या पता चला कि फरिश्ते तो हैं ही। सूरह तहरीम आयत 6 में भी हम पढ़ेंगे ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून, वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, जो हुक्म वो इन्हें देता है वही करते हैं और जिसको उनको हुक्म दिया जाता है। क्या पता चला इन सारी बातों को पढ़ते हैं? मेरा तो अंदर से दिल डूब रहा है। यकीन करें ऐसे लगता है कि इस जमीन पे अगर हम चल फिर रहे ना तो ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सब्र और उसके हिल्म की वजह से। क्या जिंदगी का नक्शा बन जाता है। सिर्फ आप रमजान और ईद के दिन का फर्क ही देख लें, नमाजें कहाँ जाती हैं? वो वक्त से पहले वजू करके बैठने वाली कैफियत बाज दफा दावतों में भूल जाती, याद आता है नमाज नहीं पढ़ी, क्या करें सुबह से मेहमान आ रहे हैं। क्या हमारे हर हर काम की जो बवाल, जो हमारे हर काम का जो एक असर आता है ना वो हमारी इबादत पे आता है। और अभी सिर्फ इबादत की बात कर रही हूँ, बंदगी को तो पीछे कर दें, फर्क तो समझ आ गया ना बंदगी और इबादत का। नमाज पढ़ के भी कोई जरूरी नहीं है कि इंसान बंदा बन जाए। नमाज पढ़ने के दौरान जब अकल झुकती है, जब दिमाग झुकता है और मैं क्या हूं, तो फिर समझ आती है। और इसके लिए आप एक छोटा सा अपने साथ काम करें जो इंशाल्लाह आपके रमजान के मैसेज को साथ रखेगा। कोई ना कोई काम एक दिन में जरूर ऐसा किया करें कि जिससे बंदा बनना है। चाहे बासी रोटियां खाएं, चाहे फटे हुए पुराने कपड़े सी के पहने, चाहे आप सबसे ज्यादा ह्यूमिलिएट करके अपने आप को हम्बल करके कोई काम करें। और आपके मेरी औकात ही है, मैंने यही करना है, मेरे इस जिस्म को इससे ज्यादा कुछ डिजर्व नहीं करता, क्योंकि मेरी अल्लाह की नजरों में क्या इज्जत है। ये किबर है, छोटी छोटी चीज पे बड़े बनना और छोटी छोटी चीजों के ऊपर आगे पड़ जाना। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि आजजी लेके आओ, कायनात जब झुकी हुई तो तुम भी झुक जाओ, और जब हम नहीं झुकते तो याद रखिए किसी का कुछ नहीं जाता। शैतान नहीं झुक, किसी का कुछ बिगड़ा, क्यामत तक के लोग करते हैं कि वो हमें आयत सजद। बुखारी की रिवायत इब्ने उमर ने कि मिंबर पर ये सूरत नहल पढ़ी तो सजदा किया, फिर दूसरे मौके पर पढ़ी तो ना किया। नाफे ने पूछा कि किया है तो क्यों नहीं किया, तो कहा ये सजदा तिलावत है, वाजिब नहीं है। यानी कर लो तो ठीक है, ना करो तो गलत नहीं है। यानी मौका मिल जाए तो जरूर कर लेना चाहिए, और अगर हम थोड़ा सा भी झुक के कर सकते हैं तो हमारी कम अज कम एक कमी तो पूरी हो सकती है ना। तो इंशाल्लाह हल्का सा झुक के सजदे की दुआ पढ़ लेते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जैसे आयत सुन के फौरन सजदे में चले जाते हैं, इस तरह अल्लाह का हुक्म सुन के भी फौरन मानने पे चले जाएं। अब अगली आयतों में फिर उनके शर्वे आगे जो बात चल रही है वो बेटी का माशरे में क्या मुकाम था, आइए देखते हैं आयत 51 से। वقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين, और अल्लाह ने फरमा दिया कि दो माबूद मत बनाओ। तो दो नहीं बना सकते तो क्या तीन बना सकते हैं? देखिए एक के बाद तो दो ही आता है ना, तो दो नहीं बना सकते तो उससे ज्यादा तो बना ही नहीं सकते। और यहां लफ्ज है कि इलाहैन, पहली तस्नी है, ड्यूल है, लेकिन उसके बाद फिर इस नईन कहकर ताकीद की गई। दो की इजाजत नहीं तो ज्यादा की कहां से होगी? नबी सल्लम के दौर में जो मजूस थे, जिसको आज के दौर में फायर वर्शिपर्स कह सकते हैं, उनका अकीदा क्या था कि दो खुदा हैं। एक को कहते थे खैर का खुदा और एक को कहते थे शर का खुदा। खैर के खुदा को वो लोग कहते थे अहुरमन और शर के खुदा को कहते थे यजदा। उसी की तरफ इशारा है। इसी तरह आप देखिए कि हर दौर में खुशी का और गम का खुदा किसी ने आसमान और जमीन को ना बनाओ, क्योंकि इन्नमा हुआ इलाहु वाहिद, बेशक वो तो एक ही माबूद है। फैया फरहबून, बस मुझसे डरो। फइन्नमा हुआ में गायब है, अल्लाह कहते वो एक खुदा है, लेकिन साथ ही फैया या फरहबून में वाहिद मुतकल्लिम है, मुझसे डरो। सूरत नाहल जो है वो हकीकत में इतना ज्यादा इस बात का एहसास दिलाती है कि अल्लाह हमारे बिल्कुल ही करीब है। कभी उसके आगे झुकने के नाम पे, कभी उसकी पकड़ के डर से, और यहां देखिए कि अल्लाह का खौफ पैदा करके कहा कि तुम मुझसे डरो। और राहब वो खौफ होता है जो बेचैन कर दे। क्या हमें ये खौफ लगा हुआ है? क्या हम अल्लाह से डरते हैं? क्या मैं बेचैन होती हूं अल्लाह की पकड़ से? ये मुझे लगता है अल्लाह कहता है बेचैन वही हजरत इमाम बुखारी वाली कैफियत कि एक रात में 60 ही खौफ होते हैं। इंसान को फिक्र लग जाए कि कहीं अल्लाह की पकड़ ना आ जाए। वलहू मा फिस समावाति वल अर्द, और उसी के लिए जो कुछ आसमानों और जमीन में है। वलहुद्दीन वासिबा, और इसी के लिए इताअत है हमेशा के लिए। अफगैरुल्लाहि तत्तकून, तो क्या तुम अल्लाह के सिवा किसी और का तकवा इख्तियार करते हो? यहां देखिए अब और थोड़े से रंग में बात समझाई कि जब तुम्हारे दिल में अल्लाह का खौफ आएगा ना, तो तुम्हें जो चीज उसके बाद मिलेगी वो इताअत मिलेगी। यहां लफ्ज दीन जो है ना, दीन इताअत और इखलास का नाम है। इबादत सजदे की हद तक हो जाती है, लेकिन किसी का दीनदार होना उसकी नमाज रोजे उसके हिफ्ज से नहीं देखेंगे आप, देखेंगे कि वो अमली जिंदगी में अल्लाह की बात कितनी मानता है। इताअत, इखलास, वासिब का जो लफ्ज है वसब से है, किसी एक हालत पर दवाम, जिसको आप कह सकते हैं परमानेंसी, जायल ना होने के मानों में। सूरत सोफात आयत 9 में भी यही लफ्ज आता है, वलहुम अज़ाबुन वासिब, कि उनके ऊपर चिपकने वाला अजाब है, हमेशा रहेगा। तो गोया के अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम्हारे अंदर इस तरह की बेचैनी आ जाए कि तुम गुनाह पे जम ना सको। आपको पता कि उमर बिन अब्दुल अजीज गवर्नर थे, जब किसी को नाहक सजा दे दी अपने ऊपर के हुक्मरानों के खौफ से, होता है ऐसा कभी? अपनी जब वो गलती याद आती थी ना, तो बिस्तर से उठ जाते थे, रोने लग जाते थे। फिर उनकी बीवी तसल्ली देती थी कि फिक्र ना करें, अल्लाह ने आपका वो गुनाह माफ कर दिया है, माफ कर दिया होगा। हमारा हाल ये कि हम इस्तग़फार की तस्बीहें पढ़ते हुए भी मुस्कुरा रहे होते हैं। हमारे अंदर अपने गुनाहों का खौफ क्यों नहीं आता? तड़प कब होती है? जब गुनाह को गुनाह समझे, गलती को गलती माने। हम तो कहते सब कर रहे हैं, करो, हम भी करेंगे, सब करते हैं, हम किस बात की माफी मांगे? मैंने किया कि व्हाट आई डिड में पढ़ी है, इतना तो कुरान पढ़ा है, और दौरे कुरान में तो हफ्ते में 7 दिन आती थी। क्या हुआ अगर आप 1-2 हफ्ता छुट्टियां करके जरा रुके हुए काम पूरे कर लो? करें पूरे? नहीं होंगे पूरे, कभी भी नहीं होंगे। इन्हीं कामों के अंदर काम होंगे। अल्लाह के साथ मुकाबला करके बंदा ही हारता, अल्लाह नहीं हारता। सूरत बनी इसराइल आयत 22 में भी आता है कि अल्लाह के साथ दूसरा इलाह ना बनाओ, वरना फतक उदा मजमूम मखजूला, बहुत ही मजमूम होकर रुस्वा किए हुए बैठोगे। फिर इसी तरह सूरत अल-अंबिया आयत 22 में भी दो खुदाओं का जिक्र है, वलौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह, अगर इस जमीन में दो खुदा होते लफजदता, तो जमीन और आसमान दोनों बिगड़ जाते। तो करना क्या है? अल्लाह की बात भी माननी है, कंटिन्यूस बात। और याद रखिए कि यहां शिर्क की बात, जो बातें आ रही हैं ना बीच में, तो शिर्क का नुक्ता आगाज तकवे के ना होने से होता है। जब हम अल्लाह का खौफ पैदा करते हैं ना, तो फिर हम कभी किसी दूसरे को उसकी जगह पे लेके नहीं आते। तो यही सोचें कि अगर मैं अल्लाह की बात नहीं मानूंगी, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, हाँ मेरा नुकसान होगा। पहले देखिए खौफ दिलाया, अब नेमतों की तरफ इजहार है। आयत 53, वमा बिकुम मिन नेमतिन फमिनल्लाही, और जो नेमत भी तुमको मुयस्सर है वो अल्लाह ही की तरफ से है। 3 सेकंड तक अपनी नेमतों को सोचे, और हर नेमत पे लिख दीजिए फ्रॉम अल्लाह, फ्रॉम अल्लाह सुभान तआला। हर नेमत, आप देखिए मादी, माली, जिस्मानी, रूहानी, हर व माँ, और माँ जो होता है ना ये कॉमन के लिए आता है, एक होता है मन, उसमें थोड़ी सी फिर भी स्पेशलिटी आती है। माँ का मनी कोई भी, वट एवर नेमत जो भी हो, माकल, मशरब, मलबस, खाने की चीजें, पीने की चीजें, पहनने की चीजें, हर नेमत अल्लाह की तरफ से है। सुम इजा मस्सकुम दुर्रु, फिर जब वो कोई तुम्हें तकलीफ पहुंचाता है, यानी फिर जब कोई तकलीफ पहुंचती है, वह इलैही तजअरून, तो तुम उसी के सामने फरियादें करते हो, यानी अपनी ही दी हुई नेमत जब वो वापस लेता है तो फिर चीखते हो, फिर समझते हो शायद तुम्हारी कोई चीज ले गए, वो उसकी थी। देखिए किसी के पास अपनी चीज रखा दे, कुछ दिन रख ले, फिर वापस ले लें, उसको हक पहुंचता है कुछ गिला करने का। तो जब इंसान नेमतों को मिसयूज करता है, तो अल्लाह ताला नेमतें वापस लेता है, तो फिर इंसान चीखता है। ये जो लफ्ज़ है तज अरून जवार से है, बुलंद आवाज, यानी जब चीज जाती है, नेमत जाती है, तो फिर जो रोते धोते हैं उसकी तरफ इशारा है। मदद के लिए जब किसी को पुकारना हो तो ये आवाज निकलती है, वहशी जानवरों की आवाज, शिकार के वक्त जब हिरन के अंदर से जो आवाज निकलती है ना, वो तजरून है। सारी चीजों को सामने ले, जब कोई नेमत जाती है तो उस वक्त मेरा क्या हाल होता है। आप देखिए कि जब हम खुशियों में अल्लाह को पुकारते हैं ना, तो अल्लाह ने तकलीफों में हमारी जल्दी सुनता है, ایک روایت ہے جس کا خلاصہ کہ جو اللہ کو عید کے ٹائم پہ زیادہ بلاتا ہے، اللہ نیڈ کے وقت میں اس کی جلدی سے. بعضوں کو تو فرشتے بھی نہیں پکارتے. بعض دفعہ جب بہت نعمتیں بہت دن تک رہتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اب اس میں ہم نے اللہ کو کیا پکارنا ہے، اور کبھی کچھ دل کو روب لگا ہوا پھر ذرا نماز کا مزہ دیکھیں، پھر تو جائے نماز اٹھنے کو دل ہی نہیں چاہتا، کہتے میرا فالتو باتوں کو دل نہیں کرتا. تو اللہ کہتا ہے کہ جس طرح نعمت کے جانے پہ تمہاری کیفیت ہے، حضر اپنے رب سے باتیں کر لو، میں شکر تم ناچو کودو اچھلو پھولو جو مرضی کرو، میں تو بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہی ہوں. جب خوشیوں میں یہ کیفیت آتی ہے نا تو بات سمجھ آتی ہے. اور اصل خلاصہ یہ ہے کہ خوشی ہو کے غم اللہ کے بن کے رہو. سورہ بنی اسرائیل آیت 67 میں بھی یہی بات ہے، سورت یونس آیت 107 میں بھی یہی بات ہے. وہیں یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہا، اس لیے فرمایا کہ تم اللہ کو پکارو. آیت 54 ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب وہ تم سے تکلیف دور کر دیتا ہے، اب غم بھی تو دور ہوتا ہے نا، اچانک خوشی ملتی ہے. اذا فریقکم منکم بربہم یشرکون، پھر تو تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شیئر کرنا شروع کرتا ہے. ہائی لائٹ کریں شرک، کون سا شرک کرتا ہے؟ وہ کیا قبروں پہ چلے جاتے ہیں؟ نہیں، نمازیں چھڑکی، نمازوں میں شرک، روزے میں شرک، حیا پہ شرک. یعنی پھر تکلیفیں گئیں تو کہتے ہیں ہم کرتے ہیں. یہ جو کشف کا لفظ ہے، پردہ اٹھانا. سورۃ الانعام آیت 64 میں اللہ نے کہا قل اللہ ینجیکم فیہا ومن کل کرب، وہ اللہ ہی ہے جو تم کو اس سے بھی نجات دیتے ہیں اور باقی ہر تکلیف سے بھی. سورہ زمر آیت 8 میں بھی آتا ہے کہ مزے اڑا لو پھر بعد میں پکڑ ہوگی. اور سورہ ہجر جو ہے 24 اس 14 پارے کی پہلی آیت میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں ذر ہم وجم یتمتو، چھوڑ دو ان کو کھائیں پئیں جیسے جانور کرتے ہیں. تو بات کا خلاصہ کیا ہے کہ جب ایک انسان نہ خوشی میں رب کو پکارے نہ غم میں رب کو پکارے تو وہ انسان ہی نہیں ہے. یہ سب کچھ کرتے کیا؟ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ نہ شکری کریں ان نعمتوں کی جو ہم نے ان کو دی ہیں. کوئی بات نہیں، پتہ مت تاو، مزے کر لو چند دن. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پسند قریب تم جان لو گے. میں سوچتی ہوں کہ یہ چند آیتیں ہیں نا، اس کو ایک تعویذ بنا کے ہر وقت اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہیے. اپنے بچوں کو، بچیوں کو نصیحت کریں، خود کو نصیحت کریں، جب زندگی میں کوئی خوشی ملے تو خوشی دینے والے کو نہیں بھولنا. دیکھیے الحمد کے بارے میں آتا ہے کہ الحمدللہ کہنے سے نعمت پہ مہر لگ جاتی ہے، تملا المیزان. جب کوئی نعمت ملتی ہے، اب آپ اپنے اوپر لیں، ہر ایک سوچے کوئی غم، غم کہہ لیں، ہم کہہ لیں، آرزو کہہ لیں، کسی کی کچھ ہوگی، کسی اپنی ذات سے ہوگی، کسی کی بچوں کے، بیٹیوں کے، بیٹوں کے، بہن بھائیوں کے، چلتے رہتے ہیں. اب وہ ایک دم نعمت ملی، اس کے بعد اصل جو ہمارا ایٹیچیوڈ ہے نا، وہ اصل معاملہ ہوتا ہے. خوشی مل جائے تو خوشی دینے والے کو آپ نے ناراض کیا، کہہ لیں کہ آپ نے اپنی خوشی کو رسک پہ رکھ دیا. یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ دروازہ ہی کھول دیں تو فتنہ آ جائے گا. شکر کرتے ہیں نا تو وہ ایک قسم کی سیل لگ جاتی ہے، ایک لیٹر ہے، آپ اس خط کے اس میں اندر کوئی چیز ڈالیں اور اس کو سیل کر دیں. شکر کرنے سے نعمت سیکیور ہو جاتی ہے. تو ساری بات میں جو میسج ہے کہ جتنی بڑی نعمت ملے، جتنی بڑی خوشی ملے، اتنا اللہ کا شکر ادا کرو. مثلا اللہ نے آپ کو اولاد نہیں دی اور اللہ نے اب آپ کو امید لگا دی شادی کا ساتھ، کوئی بھی سوچ لے. اب اولاد کی امید ایک نعمت ہے نا، اب اس امید کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ چھٹی، ریسٹ، نمازیں گئیں، خود سے سوچ لیتے ہیں ہم بیمار ہیں. نہیں، اللہ کہتے ہیں اور نعمت کا شکر کرو. اور چلو، شادی نہیں ہو رہی تھی، اب ہو گئی شادی، ہو جائے گی شادی، کیا کرو؟ شکر کرو. گھر نہیں تھا، گھر 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 جان کا روگ بنا ہوا تھا، گھر مل گیا، اب اس کو سجانے میں نمازیں نہ چھوڑو. تو جتنا شکر کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھا دے گا. مکہ والوں کو اصل میں ایک ہی نعمت کا اظہار کرایا جا رہا ہے اور وہ نبی کی صورت میں تھا. कि देखो अल्लाह ने अपना आखिरी नबी, प्यारा नबी, बद्रे मुनीर, सिराजे मुनीर, कितना प्यारा नबी तुम्हें दिया, लेकिन तुम लोगों ने इस नबी की एक कदर ना करके छोड़ी। क्या किया तुमने? तुमने इसकी बात को रद्द किया, और उसके बरक्स क्या किया? आयत 56 देखिएगा, वयजअलून लिमा ला यालमून नसीबम मिम्मा रज़क़नाहुम, और वो बना देते हैं इनके लिए जिनके बारे में इन्हें कोई इल्मी नहीं है एक हिस्सा इसमें से जो रिस्क हमने इनको दिया। और तल्लाहि लतुसअलुन्न अम्मा कुंतुम तफ्तरून, जरूर अल्लाह ताला की कसम, जरूर सवाल किया जाएगा तुमसे इस बारे में जो तुम इफ्तरा करते हो। आपको सूरत अल-अनाम याद आई, वजालु मिम्मज़रा मिनल खरसी, मक्का वालों की वही आदत जिसका तस्करा वहां हुआ था कि अपनी खेतियों के तीन हिस्से करते थे, एक हिस्सा अल्लाह के रास्ते में, एक अपनी जरूरियात पे, एक बुतों के रास्ते में। तो जब बुतों के वाली जगह पे फसल नहीं आती थी तो अल्लाह वाली फसल उनको देते थे। वही इशारा इधर कि तुम अल्लाह के मामले में हिस्से बखरे करते हो, तुमने अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ हिस्से रखे हुए, तुम अपनी सारी चीजों में अल्लाह का हिस्सा रखते हो। कौन कहते कि तुम अल्लाह का हिस्सा नहीं रखते, लेकिन तुम अल्लाह के हिस्से में से भी दूसरों को दे देते हो। आज हम सब जरा अपने ऊपर पूछे, सूरत अनाम आयत 136 में ये बात पहले गुजर चुकी है, वो बातें रख लेते थे जो नहीं है। आज हमारा क्या हाल है? अपने आप से पूछिए, माल मिलता है कितने हिस्से हैं उसके, वक्त कितने हिस्से बांटे हुए, सेहत अल्लाह को कितना देती हूँ और दूसरी चीजों पे कितना लगाती हूँ। अल्लाह कहते जरूर पूछूंगा इन सारी चीजों को तुमसे। अल्लाह ताला कहते हैं कि ला यालमूना, या फिर देखिए यजअलूना लिमा ला यालमून, इनको खुद नहीं पता ये जो कह रहे, बगैर इल्म की बुनियाद पे गुमान रखे हुए कि ये हमारे फलां बुत को पहुंचता है, ये फलां के पास जाता है, ये फलां को फायदा होता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये अपनी मर्जी से ये बातें करती हैं, ये ऐसे काम करते हैं, ये बचकाना काम है। किसी ने बताया कि किसी की औलाद नहीं होती तो उनको किसी ने कहा कि गुड़िया लो, यानी जैसे बच्चों की खिलौने वाली गुड़िया होती है ना, फिर उसके मुंह में फीडर डाल के फलां कब्र पे छोड़ो, तो उसकी बरकत से अल्लाह ताला तुम्हारी तुम्हें औलाद दे देगा। शादी नहीं हो रही तो एक गुड्डा लो और एक गुड्डी लो, फलां कब्र पे जाके उन दोनों की शादी कर दो टूट के। ये ला यालमून, लाइमी जहालत, लोग असल मसले पे नहीं पड़ते और इस तरह के काम करके सोचते हैं कि हमारे काम हो जाएंगे। इसी तरह की एक आदत कबीला खुजाया और कनाना की थी, उसका जिक्र आज 57 में आ रहा है। वयज अलूना, और वो करते हैं या बनाते हैं, लिल्लाहिल बनाती, अल्लाह की बेटियां, यानी वो बनाते हैं अल्लाह के लिए बेटियां, हालांकि सुबहानहु, वो पाक है उससे, वलहुम्मा यश्तहून, और खुद उनके लिए वो है जो इनको पसंद। यानी अल्लाह की औलाद के तौर पर बेटियां मंसूब करते थे, अपने लिए बेटे पसंद कर लेते थे, ये बात पीछे भी गुजर चुकी। क्या करते हैं? आयत 58 इसी के साथ है, वह इज़ा बुशिरा हदुहुम बिलुंसा, और जब इनमें से किसी को बेटी की खुशखबरी दी जाती है, यानी कि तुम्हारे घर बेटी हो गई, होता क्या जल्ला, यानी उसका रंग काला हो जाता है। ये जो लफ्ज़ है ना जल्ला, दिन के वक्त किसी काम के होने को कहते हैं, जिल साय को कहते हैं ना, दिन में इंसान के जज्बात छुपते नहीं है, तो गोया के बहुत खुल के उसके गम के जाहिर होने की तरफ इशारा है। इसका ऑपोजिट होता है रात, बाता, रात में किसी काम का होना। पीछे हम पढ़ चुके हैं, युबी तू नमाला यरदा मिन कौल, और अस्वद जो है ना मुस्वद्दा, अस्वद से काला, इसी से लस मुस्वद्दन है, जमा है सूद, ये सूद क्या होता है? काला धन, ये वही है। सूद को सूद कहते इसलिए कि ये ब्लैक मनी होती है, इसी की फिर मोनस आगे सौदा आती है, काली औरत को सौदा कहते हैं। अल्लाह के नबी के एक जौजा का नाम भी सौदा था और वो भी स्याह रंग की थी। मुराद ये कि बेटी की खबर से उसका रंग काला पड़ जाता है। वहुवा कजीम, और वो खून के घूंट भरता है। किस रे शख्स को कहते हैं? सूरत नून में आता है, वइस नादा रब्बहु वहुवा मखज़ूम, हज़रत यूनुस की तरफ इशारा है कि जब उन्होंने अपने रब को पुकारा और उस वक्त वो गम से भरे हुए थे। अरबी में कहते हैं कज़ीमतिल किरबा, मश्क का मुंह बंद कर दो, पानी भरते तो उसका आगे टाइट कर देते। कुजूम कहते हैं सांस की नाली को, ये जहां से फिर सांस जाता है। पीछे ये लफ्ज आपने कहां पढ़ा है, किसी को याद है? सूरत काजमीन अलगैज, और गुस्से को पी जाने वाले, यानी कि गुस्सा नहीं आता, आता है लेकिन उसको पी जाते हैं। और सूरह ज़ुख़रफ़ आयत 17 में भी यही बात आएगी कि वाइज़ा बुशीरा, जब खबर दी जाती है इनको बेटी की। और ये कजीम का लफ़्ज़ सूरह यूसुफ में भी तो पढ़ चुके हैं ना, किसके मामले में याद है? वबयद्दतैनाहु, हजरत याकूब, उनकी आंखें गम की वजह से सफेद हो गई, वहुवा कजीम, और वो खून के घूंट पी रहे थे। तो कैफियत देखिए कि अपनी बेटी की खबर सुन के तो खून के घूंट पीता है। पीला खुजाया और कनाना का अकीदा क्या था कि फरिश्ते अल्लाह की बेटी हैं। हर कबीले का अलग बुत होता था, तो अल्लाह कहते अच्छा जी तुम मेरे लिए तो बेटियां बनाते हो और अपनी बेटी की बात आए तो इतना दुखी हो। अब लोग कहेंगे देखा ये औरत की बेइज्जती है। तो याद रखिए कि जब मक्का वालों के साथ जिक्र होता है ना तो बेटियों का शिर्क था वहां, और अहले किताब में से क्रिश्चियंस की बात होती है। सूरह मरियम में आगे हम पढ़ेंगे तो बेटे के खबर से अल्लाह कहते मेरे बेटे बनाते हो, करीब है कि आसमान इससे फट जाए। तो मतलब है कि अल्लाह को ना बेटा चाहिए ना बेटी चाहिए। अब वो मसला तो छोड़े, अब आगे जरा देखिए कि जो बेटियों के नाते से लोगों का हाल है। आयत 59, या तबारा मिनल कौमी, वो लोगों से छुपता फिरता है। मिन सू इमा बुशरा बिही, उस बुरी खबर की वजह से जो उसको दी गई, यानी बेटी की पैदाइश की खबर सुन के लोगों से छुपता है। या तबारा कलस वुरिया से है, वाव रा छुपना, वरा कलस भी हम पढ़ते हैं ना, बिम वराइल हिजाब, वो भी इसी से है, आड़ रुकावट। सूरह मोमिनून में हम पढ़ेंगे वमिम वराइहिम बरज़ख, उनके लिए एक आगे पर्दा है। हद्दे फासिल, दो चीजों को अलग करने वाली चीज, आगे के लिए भी आता है और पीछे के लिए भी आता है, इसीलिए फिर सिवा कमानी। यहां क्या मुराद है? किसी को फेस नहीं करना चाहता, डिप्रेशन में चला जाता है। और सू के लफ्ज से क्या? हर वो चीज जो दूसरे को गम में डाल दे, यानी बेटी की खबर सुन के वो तकलीफ महसूस करता है। बुशीरा का लफ्ज एक टॉन्ट है, जब बेटी की खबर मिलती है तो फील क्या करता है? आयुम सिकु हु अला होने, क्या वो इस जिल्लत के बावजूद रोके रखे? अम यदुस्सुहु फित्तुराब, या मट्टी में दफन कर दे। यदि गम क्या पड़ जाता है कि क्या इस बेटी को जिंदा रखूं या इस बेटी को मार दूं। युम सिक कलफ्स नीम सीन काफ से, मसका, किसी चीज को रोक लेना। इंसाक कहते हैं रोजा रखने को। तलाक के मौजू में पीछे पड़ चुके, फम सिकू हुन्ना, बस रोक लो उनको मारूफ तरीके से। और ये जो लफ्ज है ना, ये दुस्सुहु दाल सीन सीन दस्सा, किसी चीज को मट्टी में दबा कर दफन करना, एक चीज को दूसरी में पेवस कर देना। मुराद यह कि दफन कर दूं, दबा दूं, यानी इस बच्ची को दफन कर दूं। अला सामा यहकुमून, आगा रहो, बहुत ही बुरा फैसला जो वो करते हैं। आपको सिर्फ इन लफ्जों से ही बेटी की पैदाइश पे जो उनकी कैफियत होती है उसकी मंजरकशी हो गई। कैसे खूबसूरत तरीके से अल्लाह ताला ने उनकी ये बातें बयान की हैं, ऐसे लगता है कि बेटी की खबर सुन के उनको जरा भी खुशी नहीं होती। सोसाइटी में कल की हो या आज की हो, बेटी हकीकत में लोगों के लिए तकलीफ का सबब हुई। और जितनी जो हालत ज्यादा होती है उतनी बेटियों की पैदाइश की खबर सुन के लोग दुखी होते हैं। वो तो वो लोग थे, आज के इस माशरे में देख लीजिए, कोई बेटी को बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जहां लज्जत नहीं थी, औरत को पांव की जूती समझा जाता था, जब चाहो बदल लो। बेटी होती तो पैदा होने से पहले गड़ा खोदा होता। अरबों में रिवाज था बेटियों को पैर मारने की का। वजह क्या थी? नंबर एक क्योंकि कबायली सिलसिला था, जंगे बहुत होती थी, तो लड़के जो थे वो तो दिफा करते थे ना, तो लड़कियों की इज्जत की हिफाजत करनी पड़ती थी, एक ये वजह थी, कहते थे इनको मार दो। दूसरी वजह ये थी कि हमारी दौलत दूसरे के कबीले में ना चली जाए, तो बेहतर है लड़की मार दो तो ये दौलत घर की घर में रहे। तीसरी वजह क्या थी कि दामाद को आता देखना और उसके आगे जरा झुकना अपने लिए बेइज्जती की अलामत समझते थे। फिर एक तो वो कत्ले औलाद है जो आगे सिर्फ बनी इसराइल में आएगा, जो कसरत औलाद से आती थी। यहां सिर्फ बेटियों की बात है, मुख्तलिफ तरीके से बेटियों को मारते थे, खास तौर पे कबीला मुजर और खुजाया बेटियों को दफन करते थे। बाद बीवी यानी जब औरत डिलीवरी पेन में होती तो उस वक्त एक गड़ा खुद के रखते, जो ही खबर मिलती बेटी पैदा हुई है तो उसको माँ की पेट की कब्र सिर में डाल देते थे। कुछ कबीलों का रिवाज क्या था कि 6 साल की उम्र तक जीता रखते बच्चियों को, और जरा चलने फिरने की उम्र में हो जाती तो फिर उसको मार देते थे। देखिए ये रस्में हैं ना, इनका कोई सर पाँव नहीं होता। आज आप और मैं तो इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, लेकिन अगर ये रस्म के नाम पे आज हमारे मुआशरे में आम होता तो हम भी उबटन मेहंदी चूड़ियों की तरह इसको कर रहे होते। लोगों के दिल सख्त हो जाते हैं मुआशरे में जो चीजें होती हैं उनको करता देखकर, वही काम करते। एक सहाबी थे अल्लाह के नबी सल्लम के पास जब बैठते तो रो पड़ते। कहा अल्लाह के नबी क्या पूछा साहबा ने आपकी क्या बात है? तो कहते कि मुझे याद आ जाती है अपनी एक बेटी, अल्लाह ने मुझे बेटी दी थी, 6 साल की जब हुई तो मैंने अपनी उस बच्ची को साथ में लिया, फावड़ा लिया और उसके साथ जंगल का रुख किया। वो बच्ची मेरे साथ जा रही थी और मैंने जाके वहां जमीन खोदनी शुरू की तो वो बच्ची अपने छोटे छोटे हाथों से मट्टी हटाने लग गई, और उसके बाद उसने मेरी उंगली पकड़ ली। जब मैंने उसको उसमें धक्का देने की कोशिश की तो जो उसके अब्बा ये क्या कर रहे हो? और कहते हैं कि मैंने उसने तब तक मेरी उंगली नहीं छोड़ी जब तक उसकी उंगली ठंडी नहीं होगी। और आज ये मंजर याद आता है तो मैं रोता हूं। अल्लाह के नबी भी रो पड़े इनकी बातें सुनकर। कहते थे कि मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरी बेटी मेरे कपड़ों से मट्टी झाड़ रही है। याद रखिए कुफर के साथ दिल सख्त होता है, काफिर माँ या बाप के दिल में औलाद की मोहब्बत नहीं होती। कभी क्राइसिस सेंटर में आए हुए बच्चों की माओ के रवैये जाके सुने, कहते हैं बच्चियों बच्चे जाते हैं माएँ लेती नहीं है, मिलना नहीं पसंद करती। इस तरह के हालात है। इसी तरह एक सहाबी कहते थे कि मुझे याद नहीं 60 से 70 बच्चियों को मैं जिबा मार चुका हूं। यानी आम रिवाज था, लोग मदद करते, जैसे सोशल वर्कर्स नहीं होते, खास तौर पे एक ऐसी वहां मुहिम चलती थी कि जिसकी बच्ची पैदा हो उसको दूसरे कुछ लोग मार देते। अल्लाह अकबर। इसी तरह आपको पता है कि एक सहाबी तटी में कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई थी कि जब कोई अपनी बेटी को मारने लगता ना तो कहते तुम इसको मारो ना हमें दे दो। जैसे आज भी झूला के नाम पे इस तरह के कुछ आपको इदारे दिखेंगे। बाज लोग कहते थे कि 10 ऊंट ले लो, दियत दे दो और बच्ची हमें दे दो। बाज लोग इसको बुरा भी समझते थे। इसके बावजूद आप देखिए कि इस्लाम ने औरत को कितनी इज्जत दी। इस्लाम ने तो औरत को सबसे पहला जो हक दिया है ना वो जीने का हक दिया है। आज ये औरत इस्लाम का एहसान नहीं मानती, वरना एक मुस्तशरिक कहता है कि अगर मुझे यकीन न होता कि ये कुरान मोहम्मद ने लिखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मैं कहता कि इस कुरान को लिखने वाली औरत है, एक मर्द नहीं है। इतनी इज्जत दी, बीवी बेटी बहन माँ चार रूप में औरत को इज्जत दिलाई। बीवी की कोई इज्जत नहीं थी। इसी तरफ देखिए कि अरबों में तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के गलबे के साथ ये कल्चर खत्म हुआ, और आप पढ़ेंगे आगे जाके अल्लाह ताला ने कुरान पाक की एक सूरत में इसका जिक्र कर दिया, वैजल मऊदत सुइलत, दिया जाएगा कि बता तेरा क्या जुर्म था कि तू मारी गई। मुफस्सरीन कहते हैं कि अल्लाह इतना नाराज होगा बेटी को मारने वाले माँ बाप से कि उनसे नहीं बात करेगा, उस मासूम बच्ची से पूछेगा बता तेरा क्या जुर्म था कि तू मारी गई, इतना बड़ा गुनाह। अब ये सारी बातें तो वो हमें समझ आती हैं उस दौर की, आज के दौर में बेटियों को कैसे मारा जाता है। नंबर एक पेट के अबॉर्शन। आज स्पेशल अल्ट्रासाउंड ऐसे कि जिससे पता चल जाता है कि फीटस मेल है कि फीमेल है, और फीमेल है तो बस उसको मार दो। जब इस्लाम अरबों से निकलकर हिंदुस्तान तक पहुंचा, वहां भी औरतों के साथ वही जुल्म था। जब औरत बेवा होती तो उसको शौहर के साथ सती किया जाता, शौहर को भगवान कहना और उसको राम समझकर उसकी खिदमत करना। आपने अक्सर एक जुमला फिल्मों में देखा होगा, राम 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 राम, वो हर बड़ा जिसकी इज्जत करनी है उसको राम करना है। बीवी शौहर की ऐसे बात मानती थी जैसे, ये सब वहां की चीजें थी। औरत का सती हो जाना फर्ज था, और अगर कोई औरत ना होती तो उसको मनहूस समझते, खुशी में शरीक नहीं हो सकती, दोबारा उसकी शादी नहीं हो सकती। सफेद साड़ी उसने सारी जिंदगी पहननी है, सबज कदमों वाली और भारी कदमों वाली कहलाना, और हाल ये होता था कि उसको फिर जिंदा दरगोर कर देते थे। कुछ इस किस्म के फिगर्स हैं मेरे पास, आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि आज की इस मॉडर्न दुनिया में क्या हो रहा है, जहां आप कहते हैं कि औरत और मर्द बराबर है और बेटा और बेटी, नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। 2005 यानी 1985 से लेकर 2005 तक 10 मिलियन फीमेल फीटस जाया करवाए गए, ये एक हॉस्पिटल की रिपोर्ट है। यानी जब पता चला कि ये बच्चियां हैं लड़के, तो 10 मिलियन, आपको पता है 1 करोड़ बनती है, इतनी बच्चियां एबॉर्ट करवा दी गई। फिर डॉन की एक रिपोर्ट है जनवरी की, इन्हीं सालों में से 5 लाख लड़कियां इंडिया में मारी गई। और एक स्लोगन आम तौर पे जैसे बैनर्स पे आम करके दिखाया जा रहा है, पे 500 सेव 5000, यानी आज 500 दे के अल्ट्रासाउंड करा लो, पता चल जाए बेटी है तो मार के तो 50,000 का जहेज बचा लो। तो आज 50,000 5 करोड़ पे जा चुके हैं, आपको पता है हमारे मुल्कों में। इदारे यानी यूएनओ ने वॉर्न किया है इंडिया वालों को कि अगर इसी तरह से बेटियां मारी जाती रही तो उनका जो जेंडर है वो तवाजन बिगड़ जाएगा, यानी फिर औरतें होंगी नहीं। इंडिया के कुछ ऐसे इलाके हैं कि जहां अब हाल ये हो गया कि लड़कों को शादी के लिए लड़कियां नहीं मिलती, तो उसका हल उन्होंने क्या निकाला है कि 3-4 मर्द जाकर एक ही औरत से शादी करते हैं, और उस औरत को ना सिर्फ ये कि अपने शौहर की बीवी बनना पड़ता है, बल्कि शौहर के भाइयों और बाज औकात अपने ससुर की बीवी भी बनना पड़ता है। ये सब रिपोर्ट्स हैं, आप जाके खोल के पढ़ लें, आपको भी मिल जाएंगी। टाइम मैगजीन की 17 दिसंबर 2001 की एक रिपोर्ट है, एक आर्टिकल छपा था, राजस्थान की रिपोर्ट है, कि वहां लड़कियां बहुत कम है। पूछने वाले वो जो होते हैं ना, जो इंटरव्यूज करते हैं, उन्होंने पूछा कि यहाँ लड़कियां क्यों नहीं, तो कहने के बस मार देते हैं, मार देते हैं, लड़की पैदा होती है मार देते हैं, डेड किल। कहा कैसे मार देते हैं आप लोग? कहा क्या बड़ी बात है, जो ही पैदा हुई बच्ची है तो माँ ही बच्ची की गर्दन मरोड़ देती है। दिल्ली में माँ ने प्लास्टिक बैग में बच्ची को डाला और खड्डे में फेंक दिया, अवारा कुत्ते उसको खा रहे थे, मरने के करीब हालत में वो बच्ची पाई गई। एक औरत जो बड़ी मॉडर्न थी उसने कहा, क्यों इतना हंगामा खड़ा करते हो, मैंने तो अपनी 4 बच्चियों को मार दिया। कहा तुमने कैसे मारा? कहती क्या है, दूध ही नहीं दिया, रो रो के मर गई। हाँ एक बच्ची ने मुझे बड़ा हार्ड टाइम दिया कि 2 दिन तक रोती रही फिर ठंडी हुई। ये रिपोर्ट है इनकी। 13 अक्टूबर 2005 की एक रिपोर्ट है, रेत का बैग मुंह पर रख कर बच्ची को मसल दिया। पाकिस्तान और चाइना में भी 60 मिलियन लड़कियां मारी गई। बच्चियों को जहरीला मादा दरख्तों से कुछ निकलता है, गांव देहातों में कुछ लोगों के पास अफोर्ड नहीं भी कर सकते ना, तो दरख्तों में से लिक्विड एक निकलता है जो जहरीला आता है, वो छोटी न्यू बॉर्न बेबीज को पिला देते हैं और वो मर जाती हैं। अब सवाल पैदा होता है कि तब तो इस वजह से मारते थे, आज क्यों मारते हैं? तो डोरी, आप इसकी रिपोर्टें जाके खुद पढ़ लीजिएगा, आपको मिल जाएंगी बहुत सारी खबरें। जहेज की वजह से लड़कियों को मारा जाता, कलर टीवी ना लाने पर लड़की को मार दिया गया, भाई ने अपनी बहन का जहेज लेने के लिए अपनी किडनी बेच दी, खबर है। अब आप सोच सकते हैं कि जिस इस्लाम ने औरत को इतनी इज्जत दी हो, आज वो औरत इस इस्लाम से कितनी दूर है। कभी हम इस्लाम का शुक्र गुजार होते तो पूरी दुनिया की औरतें तो कम अज कम मुसलमान हो चुकी होती। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि देख लो तुम बेटियों के साथ क्या करते हो। حدیث سے بہت زہرف میں تھوڑی سی سنا دوں گی آپ کو کہ وہ فرمایا تمہیں بتا بہترین صدقہ کیا ہے؟ کہا کیا ہے؟ کہا وہ جس کی بیوی بیٹی طلاق یا بیوگی کے بعد اس کو پلٹا دی گئی ہو اور وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یعنی بیٹی کے ساتھ اچھے معاملے پہ اتنی حدیثیں جتنی بیٹے پہ نہیں ہیں. بخاری کی روایت ہے کہ جس کو اللہ نے بیٹی دی پھر وہ اس کو اپنی استطاعت کے مطابق اچھے کپڑے پہنائے, اس کا خیال رکھے تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ تین بیٹیوں کو جس نے پالا پوسا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کو جنت کی خوشخبری ہے. صحابی نے کہا اچھا اگر جس نے دو کو پالا, کہا دو بھی ایسے ہی ہے. اور صحابی کہتے ہیں اگر ہمیں یقین ہے کہ ہم اللہ کے نبی پوچھتے تو آپ نے اس پہ بھی یہی کہنا تھا. اسلام تو بیٹی سے اتنا پیار سکھاتا ہے. اللہ کے نبی کو کتنا پیار تھا فاطمہ سے, سفر پہ جاتے سب سے آخر میں ان کو ملتے تاکہ آخر میں ان کا لمس محسوس کریں, واپس آتے تو سب سے پہلے فاطمہ سے ملتے. فاطمہ آتی تو آپ اپنی مزمل بچھا دیتے, پیار سے ان کو گلے لگاتے, اتنی محبت کرنا چاہیے. مزاج ہمارا نہ جانے کہاں سے بن گیا کہ بیٹی ہوگی تو یہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیسی کہ باتیں کر کے یہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. آیت 60 سے اگلی آیتوں کو دیکھیں. لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ, ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے بری مثال ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور اللہ کی صفت نہایت بلند ہے اور وہ زبردست بھی ہے اور کمال حکمت والا بھی ہے. اشارہ اسی کی طرف ہے کہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں. اصل میں اللہ کو نہ تو بیٹے چاہیے نہ بیٹیاں چاہیے, لیکن یہ اپنے آپ کو اس طرح سے کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں اور بیٹے بنا کر مخلوق کے برابر لے آتے ہیں. اللہ اگر پکڑنا چاہے تو ان کے اس جرم پہ کیسے پکڑے؟ آیت 61, وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ, اور اگر اللہ فوراً پکڑ لیتا لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے تو نہ چھوڑتا اس زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا. ولا کی یو خیر ہمیلا جل مسما, سوری, اور لیکن وہ ان کو مہلت تھوڑی سی دیر کی وقت مقرر تک. فیضا جا جلوہم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون, پھر جب ان کا وقت معین آئے وہ اس سے ایک ساتھ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے. اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے تمہیں جینے کی جو مہلت دی ہوئی ہے نا, یہ تمہارا حصہ نصیب نہیں ہے, حصہ نہیں ہے, بس تمہیں اللہ نے اپنے. ویجعلون للہ ما یکرہون, اور وہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے جو خود پسند نہیں کرتے. یعنی خود تو بیٹی پسند نہیں کرتے اور اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں. وتصف السنتهم الکذب, اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کر رہی ہیں. کیا یہ ہے ان کی زبانوں کا جھوٹ؟ اس کو ہائی لائٹ کر لیں. ان لہم الحسنی, کہ ان کے لیے تو یقیناً بھلائی ہے, یعنی کچھ بھی کریں ہمیں تو خیر ہی ملتی ہے. آج بہت سارے لوگوں نے یہ سوچا ہے ہم غلط کریں اچھا کریں ٹھیک کریں برا کریں ہمیں تو خیر ہی ملنی ہے. عزت دولت سرداری شہرت جو ملی ہے یہ اس لیے ملی ہے کہ اللہ نے ہمیں دینی دینی ہے. اللہ کہتے ہیں یہ خوش فہمیاں سب نکل جائیں گی. لا جرم ان لہم النار, اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے لیے آگ ہے. وانہم مفرطون, اور وہ اس میں آگے بڑھائے جائیں گے. یعنی جو مرضی کہہ لیں یہ ان کی مرضی ہے, اصل بات ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں, یہ ان کا اپنا خیال ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ان کے لیے یہ باتیں نہیں رکھی. ان آخری آیتوں کا خلاصہ کیا ہے کہ یہ اللہ کی مثال پیش کرتے ہیں. مثل السو ہے, اللہ کے مقابلے میں انسانوں کی یہ مثال ادنی. اللہ کو ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں جو انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے. اور دوسری بات ہے کہ جب لوگوں کو دنیا میں گناہوں کے باوجود بھی بہت کچھ ملتا ہے تو وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ان لہم الحسنی. سورہ کہف آیت 36 میں بھی ہم پڑھیں گے, باغ والا ایک واقعہ جس میں اس نے کہا وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي, اور اگر میں اپنے رب کی طرف پہنچ بھی گیا لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا, میں اس سے بھی بہتر باغ پالوں گا. سورت سبا آیت 35 میں بھی اور سورت مریم آیت 77 میں بھی یہی بات ہے کہ لوگ جب دنیا میں اپنی غلطیوں کے باوجود رزق پاتے ہیں نا تو سوچتے ہیں کہ ہمیں وہاں بھی بہت کچھ ملے گا. تو بات یہ ہے کہ جب دنیا ملتی ہے تو اللہ سے قریب ہونے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تاللہ اللہ اللہ کی قسم، دیکھیں جوش دیکھیں، اللہ کی قسم، لقد ارسلنا الى امم من قبلک، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بہت سی امتوں کی طرف، آپ فہو ولیہم الیوم، تو آج وہی ان کا ساتھی ہے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی دنیا میں غلط کام کر کے بھی خوش ہوتے ہیں، کل پکڑ جب ہوگی تو ان کو پتہ لگ جائے گا کہ انہوں نے اللہ کو کتنا ناراض کیا اور اللہ ان کے اوپر کتنا ناراض تھا. اس لیے فکر کریں. اور ان کے اعمال کون سے تھے جن کو شیطان نے خوبصورت کیا؟ پیغمبروں کی تکذیب، نافرمانیاں، شیخیاں بگاڑنا، بڑے بڑے گناہ کر کے بھی کہنا ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، کا الیوم، آج کے دن پھر وہ ان کا ولی ہوگا. اس سے مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، جس طرح پچھلی قوموں کو نبیوں کے خلاف کام کرنے پہ اللہ نے پکڑا، تو آج مکہ والوں کو بھی پکڑا جائے گا، پکڑیں گے. اسی طرح الیوم سے مراد دنیا ہے، اور قیامت کا دن کیا ہے کہ گناہ کر کے لوگ بچے ہوئے ہیں، تو یہ صرف اللہ کا تحمل ہے. آخری آیت ہے، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور نہیں اتاری اے نبی ہم نے کتاب آپ کی طرف، اِلَّا مَگَر لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، مگر اس لیے کہ ہم واضح کر دیں ان کے لیے وہ سب کچھ جو جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. پہلی وجہ کتاب کے نزول کی، دوسری وجہ وہ خدن اور ہدایت ہے، اور تیسری وہ رحمہ اور رحمت ہے. لیکن کس کو ملیں گے یہ فائدے؟ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ، ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. بالکل وہی انداز ہے جو سورت یونس کی آیت 57 اور 58 میں پڑھ چکے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وخدم ورحمۃ للمؤمنین کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون. کیا لوگو، آ گئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، اور تمہارے سینوں کے جو روگ ہیں ان کی شفا اور ہدایت، اور اہل ایمان کے حق میں بہت بڑی رحمت. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ یہ قرآن اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوا ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس پر خوشیاں منائیں، وہ بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں. سبق کے شروع میں بھی یہی بات تھا، تبیین قرآن، آخر میں بیچ میں ان کی خرافات کا ذکر ہے. ہمارے لیے عمل کی بات کیا ہے کہ قرآن ہی وہ واحد سہارا ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتا ہے. آج سننا چھوڑیں، صرف آج سننا چھوڑیں، کل سے اب وقت نیک ہو سمے کچوکے لگاتا ہے. کم از کم ہم اس کو سن کر اپنے وہ غبارے میں سے ہوا تو نکلتی بھی محسوس کرتے ہیں نا، جو ایک گمان ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ وہ ہمیں عاجزی دے، اللہ کی پکڑ سے بچائے، غلط کاموں سے بچائے، اور اللہ کی فرما برداریاں کر کے اس دنیا سے جائیں، نہ کہ اس کی نافرمانیوں کے ساتھ جائیں. سبق پورا ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. چھوٹی سی ایک بات ہے کہ آن لائن پہ چونکہ ہم لوگوں نے 2 بجے کا ٹائم دیا ہوتا ہے، یہاں کا 2:15 ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. تو جس جب تفسیر اس طرح 2 حصوں میں ہوتی ہے بریک کے بعد، تو پھر چونکہ ہم اینڈ تک تفسیر کرتے ہیں، تو نتیجہ پھر اس کا یہ کہ آن لائن والوں کو شاید فیل ہوتا ہوگا، تو اس کو مل بانٹ کے کر لیجئے. اگر تو یہی روٹین ٹھیک لگتی ہے سب کو، تو پھر آن لائن والوں کو بھی 2:15 کے ٹائم دے دیتے ہیں. تو بہرحال اس پہ ہم جو بھی چیز ہو اس کو فائنل کر کے، تو پھر نیکسٹ ویک سے اگر آپ لوگ اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں کہ اینڈ پہ تفسیر ہو تو ٹھیک ہے، یا جیسے پہلے ہم کر رہے تھے رمضان سے کہ دور بریک سے پہلے پہلے تفسیر پوری ہو جاتی ہے، تو جو بھی فیڈ بیک ہے آپ لوگ اس کو دے دیجئے گا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. کوئی بات، جو بھی سیکھا سنا، سنتے ہوئے کیا فیل ہوا؟ ارم آپ نے اپنا جو اسٹال لیا ہوا اس کا لوگوں کو ساتھ تیار کیا آپ نے؟ کمنگ سنڈے، یہ کمنگ سنڈے جو یہ मस्जिद अलीजन मॉस्क कहते हैं उसको शायद, उसके गार्डन में शायद कोई प्रोग्राम हो रहा है बाग में, तो वहां नुरुल कुरान के लिए इन्होंने स्टॉल भी लिया करें आपस में और ड्यूटीज लगा के। क्योंकि देखिए स्टॉल लेने से क्या होता है, असल तो ये कि जो लोग आते हैं उनसे बात करनी है ना, तो स्कूल की जो चीजें हैं वो बेचें या लोगों को सदकाजारिया सीडीज दें, क्लासेस की एडवर्टाइजमेंट करें, तो आप लोग इनके साथ कोऑर्डिनेट करके इरम, आप दोनों इरम बैठ के, तो इनमें से साथियों की ड्यूटीज लगा के तो पूरे दिन को स्केड्यूलाइज कर लें कि कितने वक्त में किसने कब रहना। ऐसे वक्तों में यही हम लोग करते हैं कि सारे साथियों की ड्यूटियां लगती हैं, कोई सुबह में जाता है एक एक घंटे की ड्यूटी ले लें, स्टॉल पे रहना खड़े ना, मेरा ख्याल है कि एक स्टॉल में 5-6 लोग एक वक्त पे होने चाहिए जितना क्राउड होता है, और जब इतने पैसे दिए हैं इतनी एफर्ट हो रही है तो उसका आउटपुट भी तो निकले ना। इसी तरह वहां सीडीज की जरूरत है बनाने की, तो जो सीडीज बर्न कर सकते हैं साथी वो मैक्सिमम इन चीजों पे हिस्सा डालें, यानी जिस तरह से भी करें, बल्कि अगर वहां इजाजत है। नॉर्वे में तो ये लोग क्या करते हैं कि ऐसे वक्तों में कुछ केक्स बना के ले आते हैं, आई डोंट नो इरम को पता होगा कि हम वहां कुछ भी बेच सकते हैं, बेच सकते हैं, तो आप लोग कुछ खाना बेच लें अगर खाने की इजाजत है, बहुत बिकता है, इतना बिकता है माशाल्लाह, अच्छे अच्छे केक्स हों उसके छोटे छोटे पीसेस काट के, चाय का केक का मैंने देखा है वहां, जो मेरे मुंह पे इसलिए आया कि वहां ये स्टॉल बहुत कामयाब रहा, दही बड़े बना के छोटी छोटी बॉक्सेस में लोग ले आते हैं, इसी तरह रस मलाई, दही बड़े, केक और चाय, ये चार चीजों के लगाए, कम अज कम वो मनी तो स्कूल को आएगी ना जो गई है, और प्लस चले लोगों को सीडीज हम फ्री भी बांट के सदका जारिया बॉक्स रख लें तो कोई हर्ज नहीं है। तो आप डबल चेक कर लें कि खाने की इजाजत है वहां लगाने की, डबल चेक कर लें, कुछ भी बेच सकते हैं, चॉकलेट्स कैंडीज लगाएं, तो ये तो एक बड़ा फन का एक मौका होता है, सिर्फ औरतों का या मिक्स है, फिर आप लोग जरा ढंग के बन के जाइएगा, स्टॉल पे खड़े होना है तो ढंग से खड़ा होना होगा जी। जी आप लोग इसको बैठ के कर लीजिए इसके बारे में, ठीक है इंशाल्लाह, तो आप लोग जी ऑनलाइन पे भी साथी हैं तो इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। तो बहरहाल आप इसको प्लान आउट करें, इसमें दिन 2-3 दिए हैं, और जुमे को भी अनाउंस करके तो इसका एक पूरा प्लान बना के दिखाइए, ठीक है, जजाक अल्लाह खैर।
جزاكم الله خيرا كثير واسم جزا استاذ، الحمد لله جی الحمد للہ رب العالمین۔ آج کی لیسن سے کیا بات سیکھی ہے کہ ایک بات آپ لوگ سب لکھیں تاکہ ہم اپنے ذہن میں وہ چیز لے کر جائیں کہ ہم نے اس چیز پر انشاءاللہ تعالی فوکس کر کے کام کرنا ہے۔ کیا سیکھا ابھی تک کے لیسن سے آپ نے؟ جی ہم سب کو اپنی آخرت کی اصل فکر ہونی چاہیے نا، کہ قیامت کے دن ہم کس حال میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا چاہتے ہیں، اور ہمارے اس دنیا میں خاتمہ کس چیز پر ہونا چاہیے۔ صبر اور توکل، بالکل ٹھیک ہے، عاجز ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ وہی بات بار بار اب ہمیں ریمائنڈرز مل رہے ہیں نا، یہی کہ جو پڑھ لیا ہے اسے ایز سون ایز پاسبل اپنے عمل میں لے کر آ جائیں، اس کے لیے دعائیں کریں، اس کے لیے کوئی اپنے لیے ہم ایک طرح سے سیٹ کریں کچھ اسٹیپس کہ اب یہ کرنا ہے اور اب یہ کرنا ہے، تاکہ ہم کچھ آگے تو ضرور ہی بڑھیں نا۔ شکر سے نعمت سیکیور ہوتی ہے، عاجزی علم سے نہیں، علم پہ عمل سے آتی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، ہجرت اوے فرام آل نافرمانی، بالکل انشاءاللہ تعالی، جتنی زیادہ نعمتیں اتنی زیادہ عاجزی، خاتمہ بالخیر ہو بس ایمان پر، بالکل ٹھیک ہے، خوشی ہو یا غم اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ان شاء اللہ تعالیٰ، اور قرآن ہمارا سہارا ہے، یہ بات بالکل درست ہے۔ شکر صبر نعمتوں کی قدر، مینی ادر تھنگس، بالکل صحیح بات، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم عمل میں لے کر آتے ہیں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا حکم، اس سے ہمارا ایکسپیرینس بڑھتا ہے، اور جب ایکسپیرینس بڑھتا ہے تو ہماری حکمت بڑھتی ہے نا، اور پھر ہمیں اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم لفظوں میں جب کہتے ہیں تو بڑی آسان ہوتی ہیں، لیکن پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے سے تو ہمیں ہارڈ شپس کو ایکسیپٹ کرنا آ جاتا ہے، اور جب ہم وہ کرتے ہیں تو اس سے پھر ہمارے اپنے اندر کی جو ایک واٹ وی کین سے کہ تکبر، یا ہمارا جو وہ ریسٹ زون ہے وہ ذرا سا ڈسٹرب ہوتا ہے، جس سے پھر ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن اور زیادہ اسٹرانگ کر پاتے ہیں نا۔ بالکل، اللہ تعالیٰ علم کے بعد عمل کرنے سے عاجزی آتی ہے، بالکل صحیح بات ہے، یہی بات ہے، انشاءاللہ ہم بھی یہیں وائنڈ اپ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو باعمل بنائے, اور یہ جو ہم علم یہاں سے لے کر جا رہے ہیں ان میں سے ایک ایک آیت کو ہم کوشش کریں کہ ہم ان کا حق ادا کر سکیں, جو کہ ہم نہیں کر سکتے, لیکن اگر ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ تو ہو ہی جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کرے اور ہمیں ایکسپریسو بنائے, یہ ایمان ہمارے اندر آئے تو ہم ساری دنیا کے لیے ایک چلتا پھرتا ایک نمونہ بن جائیں بہترین اسلام کا, انشاءاللہ. آمین. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. امين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.